जय शिवाय। आज हम बात करेंगे चौथी अविद्या की, है ना। हम चित्त की वृत्तियों की बात कर रहे थे, तो उसमें जो पहली वृत्ति है हमारी, उसमें वो है अविद्या। तो हम अविद्या के बारे में, अलग अलग अविद्या जितने तरह की, चार प्रकार की होती है, बट एक आजकल के उससे देखेंगे तो एक पांचवें प्रकार की भी होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे वो चौथे प्रकार की अविद्या, जो कि बहुत ही गहरी है, इतनी गहरी है और इतनी, कहना चाहिए कि आप इस मनुष्य के अंदर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसको निकालना अपने अंदर से और उसको समझना, वो इतना सीधा सा काम नहीं रह जाता है, है ना। और वो चौथी अविद्या है क्या? वो चौथी अविद्या है कि आपके अंदर अहम बना, है ना, महत तत्व से अहम बना। अब हम इस वक्त अहम का मतलब ऐसे नहीं लेंगे कि जो अहंकार में होता है, ठीक है। अहम का मतलब यहाँ अहंकार नहीं है, या अहम का मतलब वो नहीं है जैसे हम मान सम्मान या ऐसे दंभ, वो सारे जो स्वरूप होते हैं ना, वो अहम का मतलब नहीं है। अहम का यहाँ मतलब है कि आपकी एक स्वतंत्र पहचान, है ना, आपका एक स्वतंत्र अस्तित्व, जो कि एक आत्मा समझ लेती है कि हाँ, मेरा पहला, मैं एक स्वतंत्र अस्तित्व हूं अपने आप में, है ना। तो वो मैं जो एक बन जाता है, तो वो वहां से अलगाव है, वहां से वो संबंध, या कहना चाहिए संबंध विच्छेद है वो, किस चीज से, कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूं और मैं परमात्मा का ही अंग हूं, है ना। ऐसा समझने की जगह जब वो महत से हमारे अस्तित्व में आत्मा पहली बार अविद्या स्वरूप अहम बनाती है, तो वो अहम हमारे अंदर, जब बहुत ही कोई आत्मा पहली बार जब वो बनता है स्वतंत्र अस्तित्व, तब तो वो बहुत ही, कहना चाहिए, शुद्ध रूप में होता है अहम, है ना, कि आत्मा एक अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है ना, वो एक शुद्ध रूप है, हर आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। लेकिन वो बिगड़ता कैसे है? स्वतंत्र अस्तित्व तक तो ठीक था, तो हमने मान लिया, तो अब इस बात को हम कैसे समझते सकते हैं कि हम उसको अहम नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि ये मैं हूं। तो ये जो मैं शब्द जुड़ गया ना, मैं शब्द जो पकड़ लिया आत्मा ने, या मैं, ये मैं हूं, या मैं हूं, ये एक जो स्वतंत्र अस्तित्व आत्मा ने पकड़ा, अब ये मैं कैसे 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 बिगड़ता है, कि अभी बहुत नीचे से शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले कहां से जुड़ जाता है? शरीर से, है ना। आप देखिए आपके बोलचाल की भाषा में, और यहां पर भाषा की भी वो समझनी होगी कि भाषा अपने आप में एक बड़ी लिमिटेड सी चीज है, है ना। किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, भाषा का प्रयोग एक बहुत ही लिमिटेड अंदाज में, बहुत ही लिमिटेड तरीके से, एक बहुत ही बाउंड्री बंद संरचना में, और एक बिल्कुल सुरक्षित उसमें किया जाता है भाषा का प्रयोग। इसीलिए हम कहते हैं कि समाधि की भाषा नहीं होती, है ना, या कहना चाहिए कि समाधि की भाषा मौन है, या ऐसे समझना चाहिए कि शांति है, शांति एक भाषा है ना, मौन एक भाषा है, एक साइलेंस एक भाषा है अपने आप में, और जो समाधि की या परमात्मा की भाषा है उसमें शब्द नहीं है, वो भाषा विहीन है एक तरह से कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति तो है, लेकिन भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं है, है ना। आपको भी कभी किसी को प्यार दिखाना है तो जरूरी थोड़ी है शब्दों में बताएंगे, और भी बहुत तरीके होते हैं ना बताने के, और भी बहुत तरीके से समझा जाता है। तो ऐसे ही समाधि को और एनलाइटनमेंट को, सेल्फ रियलाइजेशन को समझने के लिए शब्दों की अभिव्यक्ति जरूरी नहीं होती, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति जरूरी नहीं होती। लेकिन जब हम बिगाड़ते हैं उस चीज को, जब वो बिगड़ती है हमारे अंदर, मैं कौन है ना, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो ये जब हम बिगड़ता है ये, तो कैसे कैसे बिगड़ता है? सबसे पहले शरीर के द्वारा बोला जाता है ये मैं हूं, है ना। आप में से कितने लोग बोलते हैं कि हाँ ये मैं हूं, शरीर की तरफ इशारा करके या शरीर को समझ के तो बोलते हैं कि मैं हूं। अब देखिए और कितना खतरनाक इस बात का वो हो सकता है, स्वरूप हो सकता है, ये मैं हूं तो तक तो ठीक था, है ना। अभी देखिए भाषा का प्रयोग कैसे है, मैं बीमार हूं। अगर आप आत्मा है तो बीमार शरीर हो सकता है ना, बीमार मन हो सकता है, बीमार कुछ भी हो सकता है, मैं तो बीमार नहीं हो सकता कभी भी, आत्मा तो अजर है, अमर है, किसी चीज, कोई चीज उसे छूती नहीं है, कुछ करती नहीं है। हाँ, वो अविद्या की वजह से उसे दिखता है कि ये मैं हूं, लेकिन सच में तो वो मैं नहीं है, सत्य तो ये नहीं है, है ना? तो सत्य कैसे, भाषा कई बार सत्य को कैसे पलट देती है या सत्य को कैसे छुपा जाती है ना? ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिख जाएंगे। अब मैं बीमार हूं या कोई आपको मार रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई मार रहा है, मारिए मत किसी को और मार खाइए भी मत, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहे हूं कि कोई मार रहा है तो आप बोलेंगे मुझे मत मारो, है ना? तो अब मुझे मत मारो क्या है, आत्मा को कोई मार कैसे सकता है? तो मार नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है मेरे शरीर को मत मारो, है ना? जब आप कहते हैं कि मेरे, कि मुझे चोट लग गई, तो सही शब्दों में उसका मतलब क्या है कि मेरे पैर में चोट लग गई या मेरे कहीं पर भी हाथ में चोट लग गई, तो मेरे, तो मेरा, कहां मैं का प्रयोग होना चाहिए और कहां मेरा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन भाषा में सब गड़बड़ गड़बड़ होने से क्या हो जाता है, बोलचाल करने से, कि जहां जहां मेरा का यूज होना चाहिए था, मेरा का उपयोग होना चाहिए था, शरीर से जुड़ी हुई हर बात के संदर्भ में, हर बात की अभिव्यक्ति में, जहां मेरा होना चाहिए था, उसकी जगह आप मैं लगाते हैं। कुछ लोग मैं नहीं तो हम लगाते हैं, हम नहीं तो अपन लगाते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे उसके पर्यायवाची टाइप के शब्द हो सकते हैं। तो देखिए कैसे एक एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी बात को पलट दे रहे हैं, है ना? हमने एक बड़े मजे से कह दिया कि मेरा पैर भी मैं हूं और मेरा हाथ भी मैं हूं, मेरा सर भी मैं हूं और मैं ये शरीर भी मैं हूं, तो सत्य नहीं है ना ये। तो देखिए मैं को हमने कैसे, हर चीज जिस जो कि मेरी थी या मेरा था, उसको मैंने मैं समझ लिया, है ना? अब ये बात दुख का कारण, अविद्या दुख का कारण होती है ना? हमने बात की ना शुरू में, समझा ना हमने पिछले तीन वीडियोस में कि अविद्या दुख का सबसे बड़ा कारण है संसार में, और बंधन का सबसे बड़ा कारण है, और कर्म को करते चले जाने का, कर्मों का सबसे बड़ा कारण है, है ना? ऐसे कर्म, बंधनकारी कर्म, ऐसे कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं जिनसे बंधन नहीं बनते, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनसे बंधन बनता है। आपको कर्म को के बारे में समझना है तो आप, और मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, हिंदी चैनल पर भी हैं, इंग्लिश चैनल पर भी हैं, कर्म के बारे में आप समझ सकते हैं, उनको पढ़, उनको देख सकते हैं। और मैंने एक हमारे इंग्लिश चैनल के ऊपर सांख्य दर्शन के 3 वीडियोस मैंने बनाए थे, जिसमें मैंने आपके अस्तित्व की जो संरचना होती है उसको समझाया था। उसको समझना जरूरी है। आज मैंने आपको कहा कि महत तत्व से अहम बनता है ना? तो ये वाली बात जिन लोगों के अभी समझ में नहीं आई है, वो हमारे इंग्लिश चैनल पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। सांख्य दर्शन के 3 वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं। बनाए इंग्लिश में है वो वीडियोस, लेकिन बहुत सरल भाषा में मैंने बोला है। मैं बहुत बड़े बड़े भारी भारी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग, उन लोगों को उतना तरीके से नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो आप देखिए उसको, समझिए आप उसको। तो मैं जो है उसको आपने बिगाड़ लिया, ठीक है? अब इसका दुख का कारण कैसे हो जाता है? आपके, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया या आपको किसी, आपके शरीर को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, है ना? अभी हम एक बहुत खराब और बहुत ही सटीक उदाहरण की बात करेंगे जो संसार में बहुत ज्यादा है, और वो है सेक्सुअल अब्यूज, है ना? किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज जो कि बच्चों के साथ किया जाता है, बच्चों के साथ हो जाता है, बचपन में बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे, अभी तो मैं पीछे ऐसे आंकड़े देख रही थी, बैठकर डाटा देख रही थी, तो अभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा पब्लिश किया था कि आंकड़े निकाले थे उन्होंने कि 3 में से 1 इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं, जितने लोग रहते हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर, 3 में से 1 इंसान हमेशा, हर उस व्यक्ति का 3 में से 1 के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ ही हुआ होता है ना? बचपन में किसी पास पड़ोस जानने पहचानने वाले के द्वारा, या कभी कोई टीचर के द्वारा, कहीं प्रीस्ट के द्वारा, कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी ने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ किया रहता है, ठीक है? लेकिन अब आपको यहां समझने वाली बात है कि किसी ने भी कुछ भी किया, किसके साथ किया? मैं के साथ? मैं का जो असली अस्तित्व है, सत्य अस्तित्व है, वो तो आत्मा है। आत्मा के साथ किया? नहीं। लेकिन दुख का कारण, कितना बड़ा दुख और गुस्से का कारण होता है, क्रोध का कारण होता है वो, है ना? अपने अंदर ही अंदर कोई किसी के शरीर के साथ कुछ भी कर दे, कुछ भी बुरा कर दे, तो वो कितना बड़ा दुख का कारण हो जाता है। तो हम शरीर को मैं समझते हैं, तो उस दुख की गहराई बहुत बुरी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और मैं ये नहीं कह रही हूं यहां पर कि वो होना कोई बहुत अच्छी बात है या वो कोई कम दुख की बात है, ऐसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है इस बात को, कि हल्के में नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन उस दुख की गहराई को, उस दुख को जीवन भर उठाना, उस एक इंसिडेंट को या उस एक चीज को जो हमारे साथ हो गई, उसको मैं समझ लेना, अपनी पहचान समझ लेना, है ना, वो जीवन भर। और एक जीवन कितना लंबा होता है, अगर किसी बच्चे के साथ हुआ, मान लीजिए 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, या कभी भी किसी भी उम्र में आपके साथ हुआ, और अगर एक नॉर्मल मनुष्य की हम आयु देखेंगे, 80 साल है अगर, तो सोचिए 80 साल में से अगर 70 साल पहले हुआ या 60 साल, तो उतना लंबा दुख झेलना चाहिए था क्या, इस एक घटना की वजह से इतना लंबा दुख उठाना, ये जस्टिफाइड है कहीं पर? नहीं है। हाँ, बहुत दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है ये, है ना, लेकिन क्योंकि ज्यादा दुख की गहराई और वो क्रोध की उतनी गहराई, इतनी ज्यादा द्वेष की गहराई, इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है? क्योंकि शरीर को मैं समझ लिया। अब इस बात को इस बात से एक और तरीके से समझ के देखिए कि मान लीजिए आपके पास कार है, है ना, कार है, स्कूटर है, कोई भी आपके पास गाड़ी है, वाहन है आपके पास कोई। अब किसी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, है ना, उसका बम्पर टूट गया, आप गए गुस्से में भिनभिनाते हुए अपना बम्पर रिपेयर कराया, आपके पैसे भी खर्च हो गए, और हो सकता है उस बंदे के पास इंश्योरेंस ना हो, या कार का या आपका बाइक का इंश्योरेंस ना हो, अनइंश्योर्ड कोई इंसान है, तो अब उसको वो तो पैसे भरेगा नहीं, आप ही भरोगे, और आपके आपके आपने अपने इंश्योरेंस से क्लेम भी कर लिया तो भी आपके पैसे भर जाएंगे, जो भी होगा। तो आप गए गुस्से में भिनभिनाते हो और आपने कर लिया, हाँ आपको 4-5 दिन बड़ा दुख हुआ कि अब बताओ इतनी परेशानी मुझे झेलनी पड़ गई क्योंकि मेरी गाड़ी अब चल नहीं सकती या खराब हो गई, किसी ने टक्कर मार दी या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन क्या आप उस दुख को 1 साल तक अपने अंदर मनाते रहोगे? मेरी गाड़ी तोड़ दी थी किसी ने, मेरी गाड़ी पे पत्थर मार दिया था या टक्कर मार दी थी मेरी गाड़ी पे, 1 साल तक रोगे उस बात पर, दुख मनाओगे? 1 साल तक वो गुस्से को रखोगे अपने अंदर? 5 साल रखोगे उस गुस्से को, उस गाड़ी के एक इंसिडेंट को, एक घटना को, दुर्घटना को अपने अंदर? 10 साल रखोगे? 20 साल रखोगे? 25, 50, कितने साल, कितने महीने जस्टिफाइड है आपकी गाड़ी को चोट लगने पर रोते रहने के लिए और दुख मनाते रहने के लिए और क्रोधित होते रहने के लिए? कितना समय जस्टिफाइड है बताइए आप? तो शरीर के साथ अगर किसी ने कोई भी दुर्घटना की, कोई भी दुर्व्यवहार किया, कुछ भी किया, क्या जीवन लगाना चाहिए उसमें? पूरा जीवन एक ही चीज की आग में जलते रहना चाहिए, है ना, बदले की भावना बना लेनी चाहिए? ये सब ठीक बात है, कितने दिन तक दुख बनाएंगे? तो अगर हम ये समझ लेते हैं, जिस दिन हमारे अंदर हमको ये एहसास हो जाता है कि किसी ने कुछ भी किया, मुझे नहीं किया था, मेरे शरीर के साथ किया, शरीर मैं नहीं है, मेरा है, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान, अज्ञान की बात है, बहुत बड़ा ज्ञान है कि शरीर को मैं समझ लेना, और उससे फिर बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो दुख, जो दर्द है, वो दर्द तो शरीर में होगा आपके, है ना, दर्द आपके शरीर तक रह जाएगा, किसी ने कुछ भी आपको किया, मारा, पीटा, या सेक्सुअल अब्यूज किया, फिजिकली आपको अब्यूज किया, कुछ भी किया, वो दर्द तो शरीर तक रह जाएगा, और जब तक शरीर हील नहीं हो जाता, शरीर ठीक नहीं हो जाता, चोट भर नहीं जाती, तब तक वो दर्द रहेगा उतनी मात्रा में शरीर के अंदर, और हो सकता है कि वो दर्द शरीर के अंदर बाद में भी थोड़ा सा रहे, ठीक होने में आपको समय लगेगा, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, शरीर ठीक हो जाएगा, शरीर रिपेयर हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन वो जो दर्द तक था तब तक तो ठीक था, आपने क्या किया, वो मैं जो आपने गलत समझा था, मैं जो आपने शरीर को समझ रखा है, उसकी वजह से उस दर्द से दुख बनाया। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दर्द शरीर में होगा, है ना, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, कुछ भी दर्द शरीर में हो सकता है, और दर्द होना शरीर की एक नॉर्मल, एक बिल्कुल संभावित किस्म की, एक बहुत ही संभावना है उस चीज की, है ना, पंच तत्व से बना शरीर है तो बिगड़ेगा ही, बूढ़ा भी होगा और चोट भी लग सकती है कुछ भी करते में। तो दर्द होना तो एक साधारण सी बात है ना, शरीर की नियति है, टूट फूट होते रहना, दर्द होते रहना और ठीक हो जाना, और फिर दर्द हो जाना, फिर ठीक हो जाना, ऐसे कुछ कुछ चलता रहेगा शरीर के अंदर, है ना। कोई दुर्घटना हो गई, चोट वोट लग गई तो ठीक हो जाएगी अपने आप, तो उतनी मात्रा में शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो शरीर तो ठीक हो चुका कब का, किसी ने सेक्सुअल अब्यूज किया, फिजिकल अब्यूज किया, या कोई बीमारी हुई, शरीर तो ठीक हो गया, वो जो शरीर ने, शरीर के दर्द की वजह से जो मैं से जुड़ा अज्ञान था, शरीर से जुड़ा मैं था, वो इतनी जोर से आहत हुआ कि उससे दुख बना रखा है। तो शरीर पे तो कोई किसी के कभी कोई किसी का अगर कभी रेप हो गया, या किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, या किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, शरीर को कोई चोट लग गई, निशान रह जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या हमेशा के लिए शरीर बर्बाद हो जाता है? नहीं, नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्होंने उस दर्द से दुख बना लिया हो अंदर, बहुत गहरा दुख जो मनाते हैं, बना लेते हैं अपने अंदर, है ना, और फिर उस दुख से जीवन गुजारते हैं, उस क्रोध की अग्नि में जलते जलते जीवन गुजारते हैं। लेकिन अगर ये समझ लिया होता कि किसी ने कोई मेरी गाड़ी को चोट लगाएगा, है ना, मेरी मेरी कार को या मेरे स्कूटर को, मेरी साइकिल को कोई मार देगा, टक्कर मार देगा और उसको चोट पहुंचा देगा, तो मैं कितने दिन रोऊंगी या कितने दिन रोऊंगा मैं उस बात पर, जीवन भर बदला लेने की सब प्लान बनाता रहूंगा, दिमाग में गुस्सा करता रहूंगा अपने दिमाग के अंदर उसके लिए, क्या नहीं ना। तो ऐसे ही शरीर के साथ किसी ने भी जो भी किया जिंदगी में, मैं नहीं कह रही हूं अच्छा हुआ ये, है ना, और मैं नहीं कह रही हूं कि जिसने किया वो कोई बहुत अच्छा काम था या कोई बहुत असाधारण सी बात थी, नहीं, असाधारणता है ये, समाज की विकृति है ये, है ना, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं क्या कह रही हूं कि दर्द हुआ था, है ना, और बहुत खराब बात भी है कि किसी ने इतना बुरा कर्म किया, कुकर्म किया, है ना, लेकिन आप कितने दिन दुख मनाएंगे उस बात का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मैं को कितना ज्यादा शरीर से जोड़ रखा है। अब ऐसे ही शरीर से, ऐसे ही मैं को, ये मैंने एक खराब सा दुख बनाने का एग्जाम्पल दिया, ऐसे अब आप एक सुख मनाने का, सुख बनाने का एक उदाहरण उठा सकते हैं, है ना। कई बार आप कितने अच्छे से तैयार होते हैं और कितना सज धज लेते हैं अपने आप को, और फिर शीशे में या कोई आपको ऐसे बोल देता है, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, आज आज तुम्हारे तो बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो किसी ने कहा कि अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपने अपने अंदर क्या समझ लिया, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूं। अरे आत्मा को तो आपकी किसी ने देखा नहीं, है ना, आत्मा के सही स्वरूप को तो आपने खुद ने नहीं देखा, आपको तो, आपने तो अपने आप को कभी देखा नहीं, आपने तो वो देखा है जो आपका है। अपने आप को कब देखा, कहां देखा, अपने आप से कब मिले, समाधि होगी, समाधि लगेगी, पहली बार समाधि लगेगी तो पता चलेगा ना, तब मिलेंगे ना। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, है ना, आत्म बोध किसे कहते हैं, तो समाधि के नाम है ना वो, एनलाइटनमेंट के को हिंदी में हम बोलते हैं ना आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, तो वो तभी तो पहली बार आत्मा से मिलते हैं हम जो हैं, अपने आप को पहली बार तभी तो देखते हैं, उससे पहले कहाँ देखते हैं, उससे पहले तो हम शरीर ही देख रहे थे। कोई अगर हमको अच्छी बात बोल भी रहा था कि तुम अच्छे लग रहे हो या तुम अच्छी लग रही हो, तो वो तो उसके लिए बोल रहा था ना, कि शरीर के लिए बोल रहा था ना, क्योंकि वो तो हमारा शरीर देख रहा है, तो लेकिन क्योंकि मैं शरीर से जुड़ा है तो उसको क्या समझ लिया कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ, ऐसे समझ लिया, है ना। तो ये एक अच्छी अच्छी अच्छा उदाहरण में भी है कि अज्ञान जो है अच्छी तरह से भी सुदृढ़ हो रहा है, अच्छी बात से भी दृढ़ हुए जा रहा है अज्ञान हमारे अंदर का, और बुरी बात से भी दृढ़ हुए जा रहा है। बुरी बात से दृढ़ हो रहा है तो हम क्रोध बना रहे हैं और भय भय बना ले रहे हैं, अभिनिवेश बना ले रहे हैं अपने अंदर, या राग, और जो अच्छी बात से दृढ़ हो रहा है उसे हम राग बना रहे हैं शरीर से, है ना, कि हम सुंदर लगते हैं या कोई हमको सुंदर समझता है या दिख, हम किसी को सुंदर दिखते हैं या लोग हमको, हम अच्छे दिखते हैं तो लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं, या हम अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहनते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो ये मैं है, तो शरीर से जुड़ा हुआ मैं को क्या बना दिया, शरीर समझ लिया। ऐसे ही बहुत सारे, अब थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं, है ना, तो शरीर को छोड़ देते हैं, भावनाओं पे आ जाइए अभी, है ना, जितने भी आपके इमोशन हैं, जितनी आपकी फीलिंग्स हैं, है, कोई आपको उल्टा सीधा कुछ सुना दे, आप कोई सीधी बात कर रहे हो, कोई कुछ बोलते, आपको कोई कुछ उल्टा उल्टा सीधा रख के सुना दे, किसी दिन किसी का मूड खराब है, कोई गुस्से में है और आपको कुछ बोल गया, अभी आपके इमोशन पे चोट लग गई, आपकी भावनाएं आहत हो गई और आपने क्या सोचा हुआ है, मेरी भावनाएं मैं, अभी मैं कहां से जुड़ा हुआ है, आपके अंदर के आपका जो मनो मनोवैज्ञानिक अस्तित्व तो है ना, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी जितनी है आपकी, वहां से जुड़ा हुआ है अभी आपका मैं। तो अंदर ही अंदर, अच्छा उसने मुझे ऐसे कहा, अभी अभी आपका अहंकार आहत हो गया है ना, वो मैं जो है, मैं से, मैं जब भावनाओं से जुड़ा, मैं जब फीलिंग्स से जुड़ा, इमोशन से जुड़ा, तो कैसी कैसी चीजें आहत, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, कैसे बोल सकता है ऐसे, और उसकी हिम्मत कैसे हुई, और मैंने तो पूरी जिंदगी उसके लिए ऐसे किया वैसे किया, मैं उसके इतने काम का हूं और ये हूं और वो हूं, और देखो कितनी तेज भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों हो रही आहत, क्यों नहीं उस वक्त ये दिखाई दिया कि वो आपको आहत नहीं कर रहा था, आपके अंदर शायद उठी हुई बात को, आपकी किसी बात को या आपकी किसी भावना को आहत कर रहा था। फिर वही वाली बात आ जाती है, कितने दिन तक जलेंगे भुनेंगे उस बात के ऊपर, कितने दिन तक चिड़े रहेंगे उस बात के ऊपर, कितना गुस्सा करेंगे उस बात के ऊपर, कितना किसी से बोलचाल बंद कर देंगे या रिश्ता तोड़ लेंगे इस बात के ऊपर कि किसी ने कुछ कह दिया। क्योंकि मैं कहां जुड़ गया था, भावनाओं से। विचारों पर आ जाइए अभी थोड़ा और एक लेवल ऊपर, है ना। विचार क्या है, अब बहुत सारे लोग बड़े विचारों में बहुत ही सिर्फ, और विचार से क्या बनता है, विचार से बिलीफ सिस्टम बनता है ना, हमारी आस्था का एक नेटवर्क बनाते हैं हम सारे लोग, कि हम हिंदू हैं और हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, और हम मुसलमान हैं और मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय बहुत अच्छे होते हैं, और विदेशों में रहने वाले सारे लोग गधे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, काले लोग अच्छे नहीं होते, सफेद अच्छे होते हैं, और बुरे ऐसा अच्छा होता है और वैसा अच्छा होता है, इस तरह के लोग, हर तरह की विचार से बनती है विचारधारा। तो कितने तरह की विचारधाराएं आपके अंदर घुसी हुई हैं, और कोई आपकी उस विचारधारा को ललकार दे, है ना, बात करते करते आपसे, बहस करते करते, कोई ढंग से कर रहा है बहस, मैं कुतर्क की बात नहीं कर रहे हो, कोई ढंग से तार्किक वे में आपको समझा रहा है कोई बात, आंकड़े लेकर और चीजों के की सत्य को लेकर आपको कोई चीज समझाई जा रही है, आपकी तो भावना, आपकी तो अंदर का की विचारधारा आहत हुई जा रही है, बिलीफ सिस्टम आपके अंदर का टूटा जा रहा है। क्यों, कि अभी आपके आपका मैं कहां से जुड़ा हुआ है, उन विचारधाराओं से, है ना, वो हिंदुत्व की एक विचारधारा, फेमिनिस्ट की एक विचारधारा, इंडोलॉजिस्ट होने की एक विचारधारा, और अपने आप को विदेशी और एनआरआई समझ लेने की एक विचारधारा, और भारतीय समझ लेने की, और उसमें भारतीय में भी दक्षिण भारतीय समझ लेने की, और उत्तर भारतीय समझ लेने की, अपने आप को गुजराती समझ लेने की, अपने आप को और सिंधी और कुछ तो पंजाबी समझ लेने की, और अपने आप को कुछ और समझ लेने की, पारसी समझ लेने की, और अपने आप को कहीं का विदेशी समझ लेने की, पता नहीं कितनी सारी विचारधाराएं हैं आपके अंदर, जो आपके विचारों ने सुन सुन के इकट्ठा किया कचरा, या देख देख के जीवन में जो कुछ भी आपने अपने अंदर बना रखा है, वो सारी विचारधाराएं आपकी, उनको आप मैं समझते हो, और वो बड़ी आहत हो जाती हैं, बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। कुछ लोगों से तो लोग रिश्ता ही इसलिए तोड़ लेते हैं कि बस पता नहीं कौन से तरह के हिंदू हैं, और बस पता नहीं कौन से, खुद को कुछ समझ में नहीं आता है, और क्यों संस्कृत बोले हम, और क्यों संस्कृत पढ़े, और क्यों इंग्लिश भाषा पढ़नी है, और क्यों हमको दुनिया की और 20 भाषाएं पढ़नी है, और कुछ करना है हमारी, तो हम तो इसी में रहेंगे जैसे हैं, और हम यहां से हिलेंगे नहीं, पता नहीं कितनी सारी विचारधाराएं हैं। और नारी 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 के बारे में कोई विचारधारा, और मनुष्य आदमियों के बारे में कोई विचारधारा, बहुत सारी हमारी मेरी बहनों ने बना रखी होती है, औरतों ने बना रखी होती है ना, नारी जाति ने बना रखी होती है बहुत सारी विचारधारा इन जनरल, कि हाँ आदमी कैसे होते हैं। अब उन्हीं आदमी से में से कुछ लोग आपके भाई होते हैं, पिता होते हैं, तो नहीं विचारधारा ऐसे नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन विचारधारा को कोई तोड़ रहा है तो बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, है ना। ऐसे आप देखो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, अगर आपने उनकी विचारधारा के ऊपर कोई भी बात कर दी तो ऐसे चिड़े चिड़े जवाब देंगे, और इस तरीके से आपको, मतलब क्योंकि उस बात पे मैं जुड़ा है, कोई भी इंसान आहत हो रहा है। अगर किसी के शरीर को चोट पहुंचाई जाए तो ठीक है, दर्द होगा और वो चोट लग जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन दुख बना लिया ना, शरीर पे चोट लगी तो भी दुख मना लिया, भावनाओं पे, मन पे चोट लगी तो भी दुख बना लिया उससे, और विचारधारा पे चोट पड़ी, विचारों पे चोट पड़ी, उससे भी दुख मना लिया। तो दुख जब मन गया, आहत हो गया, तो दुख बना ही क्यों उस जगह पे? दुख बना ही इसलिए है क्योंकि मैं जोड़ रखा था, मैं को शरीर से, मैं को मन से, और मैं को उससे जोड़ रखा है, विचारधाराओं से। तो विचारों को मैं, मेरे विचार मैं हूं, ये गलत, ये अविद्या है। मेरी भावनाएं मैं हूं, ये अविद्या है। मेरा शरीर मैं हूं, ये अविद्या है। और ये बहुत गहरी घुसी हुई है, और इसमें भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाषा आपकी। मैंने कहा ना कि मेरे, मुझे चोट लग गई या मुझे मत मारो, ऐसे तरह के सेंटेंसेस, मैं बीमार हूं, मैं नहीं, मेरा शरीर बीमार है ना, या बोल सकते हैं मेरा मन बीमार है ना, या और कुछ बोल सकते हैं। तो मेरा, जो मेरा है उसको मैं नहीं समझना। और ये सब कुछ मेरा हो तो हो सकता है कि हाँ, मेरा शरीर हो सकता है, मेरी, मेरा घर, मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा, मेरी भावनाएं और मेरे विचार, इतना सब कुछ तो तक तो ठीक है, मेरा तक तो ठीक है। मैं जहां समझा आपने, वहीं आप रिएक्शन पे उतर आओगे बहुत खतरनाक तरीके से, वहीं आपको चोट लग जाएगी बहुत जोर से। क्योंकि, और जिन लोगों को लगती है, जिनके शरीर पर चोट लग जाने से उन्हें जिंदगी भर के लिए वहां पे मन में भी चोट लग जाती है, और जिनको मन में चोट बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और जिनको विचारों की, विचारों पे बहुत जल्दी चोट लग जाती है, हमको पता लगता है कि उन्होंने मैं को कहां पर गलत समझ रखा है, उसी बात से ही पता चल जाता है उनका, उनका जो रिएक्शन दिखाने का तरीका है, भड़क जाने का तरीका है, या भड़क के कुछ बोल देने का तरीका है, वही समझ में आ जाता है कि अच्छा, कहां से मैं जोड़ रखा है ना। तो इस बात को ऐसे नहीं लेना कि कभी कोई भी कुछ भी है तो हम कुछ भी, कुतर्क की बात नहीं कर रहे हैं, कोई तार्किक वे में किसी चीज को समझाया जा रहा है, तो कोई तर्क आपसे कर रहा है, हो सकता है उसका तर्क ठीक हो, है ना। तो हर चीज का जांच परख होती है कि हाँ ठीक है, कितनी तार्किक बात की जा रही है, कितना अच्छा तर्क दिया जा रहा है, और कितनी सत्य को उजागर करने के लिए तर्क दिया जा रहा है। किसी के अहम को, है ना, किसी के अहम को जस्टिफाई करने के लिए, किसी के अहंकार को, किसी के ईगो को जस्टिफाई करने के लिए, किसी के उस गलत मैं को जस्टिफाई करने के लिए, ये भी देखिए कि दुनिया और समाज में और रिश्तों में कितने झूठ बोले जाते हैं। कई बार आप नहीं कहते ऐसे, नहीं नहीं मैं ऐसे बोलूंगा तो पापा को बुरा लग जाएगा, मैं ऐसे बोलूंगा तो मम्मी को बुरा लग जाएगा, लोग बोलते हो ना ऐसे, या मैं ऐसे करूंगा या ऐसे बोलूंगा तो मेरे बॉस को बुरा लग जाएगा, मेरे मैनेजर को बुरा लग जाएगा। ये क्या है, ये बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, क्या क्या लगा रखा है ये? दूसरों के अज्ञान को सुदृढ़ करने की, और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है ये सारी। अज्ञान तोड़ रहे थे, उसे बुरा लगेगा। अगर उसने गलत मैं बना रखा है तो उसे बुरा लगेगा, और नहीं बना रखा अगर उसका मैं, उसका हम, उसके अस्तित्व में जहां स्थित होना चाहिए था, अगर वो स्थित वहीं पर है तो बुरा नहीं लगेगा। वो तर्क के का उत्तर किसी और तर्क से देगा, वो बुद्धि से आई हुई किसी बात का उत्तर बुद्धि से देगा। तो बुद्धि से बुद्धि तो तर्क वितर्क कर सकती है, हां बुद्धि के साथ एक गलत जुड़ा हुआ अहम, गलत जगह पे स्थित अहम, मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी ऑफ मी और आई, वो तो नहीं, तर्क नहीं कर सकती है, है ना। पता चला बुद्धि आपसे, आपको कोई बात समझा रहा है, आप समझ किससे रहे हैं उसको, अपने अंदर के विचारधारा समझ रही है बात को, बुद्धि नहीं। समझा तो कोई और बुद्धि से रहा है, लेकिन समझ कौन रहा है? आपके मन की भावनाएं। समझा कोई आपको बुद्धि से रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? सिर्फ आपके कान। बुद्धि में जा ही नहीं रहा है ना। तो मैं जहां स्थित है, और मैं अगर, हम का भाव अगर गलत जगह स्थित है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। और सही जगह हम का भाव स्थित होगा तो क्या होगा? तब सिर्फ बुद्धि से चलेंगे। अहम का भाव सब जगह ठीक जगह से स्थित होगा तो इतना अहंकार नहीं होगा उन लोगों में, बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा कि आप उनकी विचारधारा को गलत बोलोगे तो इतना चिढ़ेंगे नहीं, और चिढ़ा हुआ सा आंसर नहीं देंगे। लेकिन बात यही है कि आपने भी बुद्धि से बहुत सोच समझ कर तर्क दिया हो, भावनात्मक तरीके से तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। आप वही, ये भावना से कोई लड़ रहा है तो वही वाली बात है, सामने वाला तलवार लेके लड़ रहा था क्योंकि वो बुद्धि से लड़ रहा है, आप भावना लेके चले आए तो वो ऐसे ही है, तलवार के सामने चाकू, है ना, या आप अपना अहंकार या विचारधारा लेके चले आए, फिर आपके पास चाकू है, या आप अपना शरीर लेके चल दिए किसी की बुद्धि की बात से लड़ने के लिए, तो फिर से आप चाकू से लड़ रहे हैं। क्यों? कि बुद्धि बहुत तेज, बहुत कुशाग्र बुद्धि, सत्व जागी हुई बुद्धि, एक बहुत ही तेज बुद्धि है। तो लेकिन वो बुद्धि काम सिर्फ तभी करेगी जब आपका अहम सही जगह पर स्थित है, अहम भाव सही जगह स्थित है। तब हम आगे की बात करते हैं, जब समाधियां लगनी शुरू होती हैं, ध्यान गहरा होता है, तब वही अहम भाव साक्षी बनता है। साक्षी भाव में आना कहते हैं ना, जब ध्यान लगता है तो हम साक्षी भाव में आते हैं धीरे धीरे करके। हम साक्षी भाव को सिर्फ तब हम सिर्फ समाधि तक लिमिटेड नहीं रह जाते कि जब हम सिर्फ ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, तब तो हम साक्षी भाव में रहेंगे, बाकी हम टाइम साक्षी भाव में नहीं रहेंगे, बल्कि हम तो या हमारा मैं जो है कभी शरीर में चला जाएगा, कभी भावनाओं में चला जाएगा, और कभी विचारधारा में चला जाएगा, विचारों में चला जाएगा, है ना, कभी पुरानी यादों में चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, तो मैं इधर उधर 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 घूमने, साइट सीइंग करने मैं चला जाएगा, तो उसके अंदर उसमें फिर आप साक्षी भाव में नहीं रहोगे। तो हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो अहम ठीक जगह पे स्थित है, तो साक्षी भाव आता है। फिर हम समाधि के अलावा भी जीवन के एक-एक पल में उस साक्षी भाव को उतार लेते हैं, क्योंकि अहम हमारा ठीक जगह पे स्थित है। अहम ठीक जगह पे स्थित नहीं है तो आप कभी साक्षी भाव में आ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि आप हमेशा शरीर के दृष्टिकोण से दुनिया देख रहे होगे, संसार देख रहे होगे, और जीवन की परिस्थितियों को, जीवन को शरीर के दृष्टिकोण से देखोगे, या फिर मनस के दृष्टिकोण से, भावनाओं के दृष्टिकोण से देखोगे, भावनात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, या फिर किसी एक विचारधारा को पकड़ के ऐसे बैठ जाओगे कि उसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, और वहां से उस दृष्टिकोण से आप जीवन को, समाज को और संसार को देखोगे, साक्षी भाव में नहीं रहोगे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अहम का सही जगह पर स्थित होना विद्या है, ज्ञान है, और अहम का गलत जगह पर स्थित हो जाना वो बहुत बड़ा अविद्या है, बहुत बड़ी अविद्या है, बंधनकारी अविद्या है, और बहुत बड़ा अज्ञान है। तो देखिए अपने अंदर, है ना, ढूंढिए उस चीज को, अपने आप को देखिए कि मैं दिन में कितनी बार जो है शरीर से मैं हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं भावनाओं को से मैं हो जाती हूँ या है जाती हूँ, और कितने दुख मैंने बना रखे हैं, बना लिए हैं अपने लिए, जो कि एक्चुअली तब बन गए जब मैंने शरीर को मैं समझ लिया, भावनाओं को मैं समझ लिया, या विचारों को मैं समझ लिया, है ना। तो अपने अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करिए, देखिए, और इस अज्ञान से बाहर निकलिए, नहीं तो साक्षी भाव में, ध्यान की गहरी अवस्था में, साक्षी भाव में कभी जाएंगे नहीं, है ना। तो ढूंढिए अपने अंदर। नमस्ते, जय शिवाय।